हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात के समय आंशी हमेशा की तरह डिनर के बाद अपने गार्डन में वॉक कर रही थी। उसके माइंड से वो बात निकल नहीं रही थी जब उसने अमन को खुद को ना छूने को कहा था। गलती उसकी भी है, उसे अचानक से आकर मुझे टच नहीं करना चाहिए था। ऐसा कौन सा बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉई को हाथ पकड़कर रोकता है? आंशी टहलते हुए खुद से बातें कर रही थी। अर्जुन एक ट्रे में दो दूध के ग्लास लेकर वहां पहुंचा। वो वहां लगे चेयर पर बैठ गया। लगता है फिर से तुझे दौरे पड़ रहे हैं, ये तो खुद से बात करना कब छोड़ेगी? कभी भी नहीं। आंशी उसके पास आकर बैठ गई। उसने दूध के ग्लास देखे तो उसका मुंह बन गया। मैं बच्ची नहीं रही जो तू मेरे लिए दूध लेकर आया है। ये बात तू बीजी को समझाना, उन्होंने मुझे दिए और मैंने लाकर दे दिए। वैसे और तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, वो तुझे दूध की जगह दारू की बॉटल भेजेगी, अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा। आंशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूध उठाकर पीने लगी। अर्जुन उसकी तरफ मासूम चेहरा बनाकर देख रहा था। उसके चेहरे के भाव को समझते हुए आंशी ने कहा, देख ये पपी फेस मत बना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं उस बारे में बात करूं। लेकिन तुम उस कहानी को अधूरा भी नहीं छोड़ सकती। जब से तुमने उसे आधा अधूरा सुनाया है मेरे पेट में बटरफ्लाइज उठ रहे हैं। मुझे बताना आगे क्या हुआ था, तुझे उसकी सच्चाई कैसे पता चली? अर्जुन बोलते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बस चल गया पता, पता चला तभी यहाँ रह रही हूँ, वरना उन्हें एजुकेशन छोड़कर तभी नहीं आती। वैसे तेरी उससे इतनी ही मिलने की इच्छा हो रही है तो तुझे बता दूं वो आजकल चंडीगढ़ में ही है। हाँ पता है, अर्जुन वापस कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। अच्छा आंशी, अगर वो यहाँ आया हुआ है तो तू वापस लंदन क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि उसे पता है कि मैं लंदन में स्टडी करती हूँ, उसे मेरी यूनिवर्सिटी से लेकर हॉस्टल तक सब मालूम है, तभी मुझे वहाँ से भागकर आना पड़ा। जब मैं पहली बार उससे छुपकर भागी थी तब लंदन ही गई थी और उसने मुझे ढूंढ लिया था। हाँ वाओ, अर्जुन ने आश्चर्य से अपने दोनों हाथ मुंह पर लगा दिए, तू सच में बहुत डेयरिंग है। हाँ कभी कभी तो मुझे भी यही लगता है, तभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ और फिर पछताना पड़ता है। अब किसे क्या बोल दिया तूने, अर्जुन ने पूछा। मेरे बॉस को, मैंने आज अमन सर को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, वो मुझे अकेले घर नहीं आने देना चाहते थे, उन्होंने मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ पकड़ा। हाँ तो उसी की गलती है, वो आवाज भी लगा सकता था, अर्जुन ने हल्के तरीके से कहा। हाँ मैंने भी यही कहा, पर उसने कहा उसका इंटेंशन गलत नहीं था। सच कहूँ तो उसने बहुत हल्के से हाथ पकड़ा था और मेरे रुकते ही हाथ छोड़ भी दिया था। अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? कल संडे है, एक दिन बाद वो भी सब भूल जाएगा। संडे से याद आया, कल का क्या प्लान है? उसने मुझे कल किसी बिजनेस ट्रिप पर भी जाने का बोला था, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर वो फेयर मिस नहीं करना चाहती। उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो मुझे उस फेयर में जाने नहीं देना चाहता था, आंशी ने बताया। देखा जाए तो तेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरे बॉस के आगे तो किसी की जुबान भी नहीं खुलती, किसी काम के लिए मना करना तो दूर की बात है, अर्जुन ने कहा। जो भी हो मुझे कल फेयर में जाना है और तू भी कोई बहाने नहीं बनाएगा, हम दोनों साथ चलेंगे। अर्जुन ने आंशी की बात पर हामी भरी और उसे गुड नाइट बोलने के बाद सोने चला गया। आंशी भी वहां से उठकर जा ही रही थी कि उसके पिता मिस्टर शिव जिंदल आ गए। मैं बस सोने ही जा रही थी, आंशी ने उन्हें टालना चाहा, लेकिन मिस्टर जिंदल ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, बस कुछ देर बात करना चाहता हूँ। उनके बोलने का भाव थोड़ा सख्त था। आंशी ने आगे कुछ नहीं कहा और कुर्सी पर वापस बैठ गई। मिस्टर जिंदल भी उसके पास बैठे थे। देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, जानता हूँ तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है, तुम्हारा बॉस भी काफी अच्छा है, मैंने देखा है वो तुम्हें अक्सर यहाँ छोड़ने के लिए आता है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? मिस्टर जिंदल ने अपने तरीके से आंशी के बिल की बात जाननी चाही। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आंशी झट से बोली, वो बस उनका घर हमारे घर से थोड़ा ही आगे है, ऑफिस जाते टाइम तो अर्जुन के साथ चली जाती हूँ, आते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो सर ने मुझे ड्रॉप करने का कहा और मैंने हाँ बोल दिया, हम दोनों के बीच एक बॉस और एम्प्लॉय से ज्यादा और कुछ नहीं, आंशी ने अपनी तरफ से सफाई दी। फिर ऐसा क्या है जो तुम यहाँ रहना चाहती हो? बेटा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, अपनी स्टडी कम्प्लीट करोगी तो इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, उनकी बातों ने आंशी को सोच में डाल दिया। उसने अपने मन में कहा, देखा जाए तो पापा का कहना भी गलत नहीं है। मैं विदिक से छुपकर यहाँ चंडीगढ़ में आई थी, अब वो यहाँ भी आ गया है और उसे पता भी चल गया है मैं यहाँ हूँ। वो कहीं नहीं जाएगा जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेता। क्यों ना मैं पापा की बात मान लूं और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। आंशी काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो मिस्टर जिंदल ने कहा, मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे दूंगा। इंडिया के अलावा तुम जिस किसी भी कंट्री का नाम लोगी, मैं वहाँ तुम्हारी स्टडी के लिए तुम्हें भेज दूंगा। बस मैं नहीं चाहता कि तुम इंडिया में रहो। आंशी ने उनकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है फिर, मैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देख लेती हूँ। इस बार आंशी ने जाने के नाम पर पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया था। मिस्टर जिंदल को भी अच्छा लग रहा था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनसे बात करके आंशी वहाँ से जाने लगी। अचानक आंशी उनकी तरफ मुड़कर बोली, एक बात पूछूं? बोलो, मिस्टर जिंदल ने जवाब दिया। आपने मुझे खुद से दूर क्यों रखा? आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं इंडिया में ना रहूं? ऐसा क्या है यहाँ जो आप मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं? आंशी ने आखिर अपने दिल की बात उनके सामने रख ही दी। मिस्टर जिंदल ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, मुझे इंडिया कभी से पसंद नहीं है, मेरे अपने कारण है। मैं खुद भी बाहर सेटल होना चाहता था पर बिजनेस की वजह से नहीं हो पाया। पहले यहाँ पर मैंने पापा को खोया और फिर तुम्हारी माँ को। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने देना चाहता। बीजी भी तो यहाँ रहती है। आप ऐसा कीजिए, इस बार मेरे साथ बीजी को भी अब्रॉड भेज दीजिए। आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं इंडिया में कदम भी नहीं रखूंगी। बीजी पापा जी का बनाया घर नहीं छोड़ना चाहती, उनकी यादें बसती हैं यहाँ पर। वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेले इतनी दूर भेज देता? इस बार मिस्टर जिंदल सी बातों ने आंशी का मुंह बंद करवा दिया। उसने ज्यादा बहस नहीं की और जाने से पहले कहा, मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे काम छोड़ने से कोई दिक्कत होगी। एक दो दिनों में मैं आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दूंगी। थैंक्स बेटा, मुझे समझने के लिए, मिस्टर जिंदल ने भावुक होकर कहा। जवाब में आंशी ने अपनी पलकें झपका दी और वहाँ से सोने चली गई। मिस्टर जिंदल के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। देर से ही सही, लेकिन आंशी ने उनकी बात मान ली थी। अगले दिन सुबह से ही फेयर में काफी चहल पहल थी। फेयर ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों में रॉबिन के आदमी थे। रॉबिन के कहे मुताबिक उन्होंने वहाँ पर 3 बड़े बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। फेयर के दिन सुबह सुबह मेलिसा अकेले ही सबको जान पड़ताल करने के लिए वहाँ पहुँची। वो वहाँ आखिरी कोने में लगी एक छोटी शॉप पर सामान देखने के बहाने अपने आदमियों से बात कर रही थी। मैंने प्लान में थोड़ा चेंज किया है, तो इस बारे में रॉबिन से कुछ मत कहना, मेलिसा ने दबी आवाज में कहा।
लेकिन हमने बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं, अब उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, उनमें से एक आदमी बोला। फेरबदल करना भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें जैसे का तैसे रहने दिया और उनमें कोई टाइम सेट ना किया जाए। उसकी बात सुनकर वो आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। अगर ऐसा हुआ तो सर बहुत नाराज होंगे। मेरा प्लान थोड़ा डिफरेंट है, बोलते हुए मेलिसा ने अपने कंधे पर टंगे बैग को वहाँ रख दिया। मैंने कुछ एडवांस्ड मिनी बॉम्ब्स तैयार करवाए हैं। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी मशीन के जरिए ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं। ये इतने छोटे हैं कि तुम इन्हें किसी भी चीज में आसानी से फिक्स कर सकते हो। अगर हमने इसे प्लांट किया तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। इसके फटते ही यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी, लोग बाहर निकल जाएंगे। सर का प्लान अलग है। मैं जानती हूँ उसका प्लान अलग है, मेरा प्लान भी बहुत अच्छा है। तुम पर कोई बात नहीं आएगी, मैं सब संभाल दूंगी। एक बार देखो इस मेले की तरफ, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। उन तीनों बॉम्ब की टाइमिंग एक ही सेट की गई है। अगर तीनों एक साथ फटे तो ये जगह तबाह हो जाएगी और यहाँ मौजूद लोग एक झटके में मर जाएंगे। मैं नहीं चाहती इतने लोग मरे। जो आदमी ये सब करवा रहा है उसके प्लान में ये कभी था ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग घायल हों, ना कि मरें। इसमें लगभग 5 बॉम्ब हैं, तुम इन्हें प्लांट करो। कुछ देर में मेरा आदमी आएगा, उसके पास ऐसे ही लगभग 10 बॉम्ब और होंगे। उन्हें तुम जगह देखकर प्लांट कर देना। यकीन मानो, ये 15 छोटे बॉम्ब इतनी तबाही मचाएंगे जितना कि रॉबिन के वो 3 बड़े बॉम्ब भी नहीं कर पाएंगे। मेलिसा ने अपना पूरा प्लान उन्हें बता दिया था। उसके सामने खड़ा आदमी हैरान थे, साथ में उसे मेलिसा का प्लान भी नहीं समझ आ रहा था। वो वहाँ दहशत भी फैलाना चाहती थी, साथ ही वहाँ मौजूद लोगों को मारना भी नहीं चाहती थी। कहा नहीं जा सकता था कि वो एक अच्छी औरत थी या बुरी। मुझे इस तरह मत देखो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। मौत से बुरा होता है मौत तक का सफ़र, और मैं चाहती हूँ कि वही मौत तक का सफ़र यहाँ मौजूद लोग महसूस करें। चुपचाप मेरा काम करो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे अपना काम करवाने का, मेलिसा ने सख्त आवाज़ में कहा। उस आदमी ने उसकी बात पर हामी भरी। तो फिर उन तीन बड़े बॉम्ब का क्या होगा जो रॉबिन सर ने प्लांट करवाए हैं, ने पूछा। उनका कुछ नहीं होगा, मैं उनकी टाइमिंग ही सेट नहीं करूंगी, उसने सारा कमांड मुझे दिया है। देखा जाए तो हम इसका इल्ज़ाम विधिक राणा पर भी डाल सकते हैं, और रॉबिन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उससे कुछ भी पूछ सके। मैंने कहा ना, तुम मेरा काम करो और बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। सारी बातें समझाने के बाद मेलिसा वो बैग उन्हें थमाकर जा चुकी थी। उसके जाने के कुछ देर बाद एक आदमी खिलौनों के बैग के साथ वहां पहुंचा। मेलिसा की बात मानते हुए उसने और उसके आदमियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, और पूरे फेयर में वो बॉम्ब प्लांट कर दिए। बॉम्ब प्लांट करने से पहले उन्होंने उनमें टाइमिंग सेट की थी जो रात के 8 बजे की थी। अपना काम करने के बाद उन्होंने मेलिसा को कॉल पर सब बता दिया था। सिक्योरिटी टीम मेले में मौजूद थी और वहां की गतिविधियों पर अपनी तरफ से पूरी नज़र रख रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उनके यहां पहुंचने से पहले ही मेलिसा के आदमियों ने अपना काम कर दिया था। सुबह आई टीम ने बॉम्ब डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी सिक्योरिटी के लिए आधे दिन के बाद अमन की टीम वहां पहुंच चुकी थी। लावण्या ने सिर पर पगड़ी और दाढ़ी मूछ लगाकर सूट पहना था। वो किसी पंजाबी आदमी की तरह लग रही थी। मिस्टर गुप्ता ज्यादा लोगों के सामने नहीं आए थे, इसलिए उन्हें छुपने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जस ने कैप्री और टी शर्ट पहनकर कंधे पर बैग टांग रखा था। वो कोई कॉलेज गोइंग बॉय लग रहा था। अमन ने फॉर्मल जीन्स और उसके ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी। उसने बालों को माथे पर फैला रखा था। टीम के लोग खुलकर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका काम काफी मुश्किल हो रहा था। लगभग 5:30 के करीब आंशी अर्जुन के साथ फेयर में पहुंची। आंशी ने कैजुअल जंपसूट पहना था और बालों को खुला कर रखा था। उस लुक वो काफी क्यूट दिख रही थी। लगता है हम ही लेट आए हैं, देखना यहाँ कितनी भीड़ है, हमें यहाँ सुबह ही आ जाना चाहिए था, पूरे दिन एंजॉय करते। आंशी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहाँ वाकई काफी भीड़ थी। अरे, तेरे पापा से परमिशन लेने में टाइम लग गया, पिछली बार तो सिर्फ बीजी को ही मनाया था, पर इस बार तो वो भी हो गए, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, शांति दीदी का भी हमारे साथ आने का कितना मन था, लेकिन बीजी ने उन्हें अपने पास रोक लिया। जितने ज्यादा लोग साथ होते हैं उतना ही मजा आता है। आंशी अर्जुन का हाथ पकड़कर उस मेले में घूम रही थी। आगे जाकर उन्हें मिस्टर सिंह का परिवार मिला। मिस्टर सिंह आंशी को वहां देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह मिस्टर सिंह, आज मैं आपके घर नहीं आ पाई तो आप मुझसे मिलने सच में मेले में चले आए, आंशी ने हंसकर कहा। हाँ, और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, मिस्टर सिंह ने जवाब दिया। आंशी मिस्टर सिंह से वहां मिलकर काफी खुश थी। मिस्टर सिंह ने भी अपने परिवार के लोगों का परिचय आंशी से करवाया। वही शाम होने के साथ साथ मेले में चहल पहल और भी बढ़ने लगी। वहां की भीड़ अमन और उसकी टीम के लिए और भी मुसीबत बढ़ा रही थी। पाठ पढ़ने के बाद समीक्षा कर दीजिएगा, अब नहीं पूछूंगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा।